हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है इस साप्ताहिक श्री कृष्णा भावना में कार्यक्रम में, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुख और स्वस्थ होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको सुखी और स्वस्थ रखे। पुनः मैं आप सबके सेवा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी द्वारा प्रस्तुत राम कथा पेश कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी को।
गोप भवन में गए और महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े थे। ये कुछ पूछ नहीं रहे थे। तब तक कैकेयी ने कहा, ये राजा की जो ये दुर्दशा हुई है, यह अपने पुत्र राम में अत्यधिक स्नेह के कारण हुई है। आप जाइए और शीघ्र राम को उपस्थित कीजिए यहाँ। तो सुमंत्र जी गए लाने के लिए भगवान को। तो भगवान और सुमंत्र जी, जो राजा दशरथ के महामंत्री थे, दोनों पैदल आ रहे थे कुप भवन की ओर। तो अयोध्या के लोग देख करके व्याकुल हो गए, ये क्या होने वाला है। आज राम का राज्याभिषेक है और बिल्कुल सवेरे सवेरे राम पैदल जा रहे हैं और सुमंत्र के साथ। अयोध्या वासी जो भी देखे इस दृश्य को, तो उनके मन में यह बात आ गई कि कोई न कोई गड़बड़ी हो गई, बाधा हो गई। तो वहां जब गए भगवान, तो देखे कैकेयी बैठी हुई है, बहुत बुरा वेश धारण करके, मोटा कपड़ा पहन लेते पुराना, और महाराज दशरथ भी नीचे ही गिर पड़े थे आसन से और मूर्छित पड़े हुए थे। तो जाकर वे कैकेयी को प्रणाम किए। कैकेयी देख रहे थे, तो भगवान श्री राम मानो संकेत से ये पूछे कि यह क्या बात है माता जी। तो कैकेयी ने कहा, राम ऐसी बात है कि तुम्हारे पिता का तुम पर बहुत स्नेह है, मोह है, वे उस मोह का बंधन तोड़ना नहीं चाहते हैं। हमसे इन्होंने दो बार मांगने के लिए कहा, एक वर्ष मैंने अपने पुत्र भरत को राज्य मांगा और दूसरे वर्ष तुमको बन जाने के लिए कह दिया। मैं कठोर बोल रही थी, तो यदि तुम पिता के धर्म को निर्वाह करना चाहते हो, पिता के धर्म का पालन करना चाहते हो, तो तुम वन चले जाओ, इनको कह दो कि जा रहा। उसी बात पर तुम्हारे पिता इतने दुखी हैं, और यदि तुम योग्य पुत्र हो, तुम पर इनका बहुत स्नेह है, तो तुमको भी चाहिए कि तुम पिता से स्नेह करो। तो पिता का धर्म समाप्त होने जा रहा है, ये जगत में असत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध होंगे, इसलिए यदि तुम सत्पुत्रत्व का निर्वाह करना चाहते हो तो इनकी आज्ञा मानो और वन में चले जाओ। बहुत कठोर बोल रहे। तो भगवान राम हंसने लगे। बहुत ही सुंदर वंदना है भगवान श्री राम की एक श्लोक में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, कि राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर भगवान का मुख खिला नहीं और बन जाने का समाचार सुन करके विषाद से ग्रस्त नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम की वह मंजुल मुखश्री हम सबके मन में सदा उदित रहे, वनगमन का समाचार सुनकर भी खुश रहे। तो हंसते हुए भगवान श्री राम ने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी दुखी हो गए? सुनु जननी सोई सुतबड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माँ सुनो, इस संसार में वही भाग्यवान पुत्र है जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं वन में जाऊंगा। मुनिगण मिलन विशेष बन सम्मत जननी तो, एक तो ये लाभ होगा हमको वन में कि मुनियों से भेंट होगी। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनियों से भेंट होगी, उनके साथ सत्संग होगा, जीवन सफल होगा। और दूसरी बात है कि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी आज्ञा का भी पालन होगा और भरत को राज्य मिलेगा। सब तरह से ठीक है। तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में ऐसा पुत्र मिलना बहुत कठिन है जो अपने आचरण से माता पिता को सुख दे। तो मुझे तो यह अवसर मिला है, बहुत खुशी की बात है। कही गई कहते हैं कि हाँ हाँ यही पुत्र का धर्म है, बहुत अच्छा है। तो भगवान गए अपने पिता के पास और लगे कहने की छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख मान रहे हैं, मैं आपके आशीर्वाद से शीघ्र ही आ जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन महाराज दशरथ कुछ कह नहीं सके। तो मन में भगवान से यही विनय करते थे कि हे भगवान, हे नारायण, ऐसी कृपा कीजिए कि राम हमारे वचन की अवहेलना कर दे। मैं कहूं वन में जाने के लिए, लेकिन ये कह दे कि नहीं जाऊंगा। हे भगवान, राम के हृदय में बैठ करके ऐसा वाक्य बोलिए कि हमारी अवहेलना कर दे। लेकिन राम तो माने नहीं, वे वहां से चले गए। फिर अयोध्या के सब लोग परस्पर बहुत सी बातें कह रहे थे। बात फैल गई कि कई कई ने ऐसा वर मांगा और राजा दशरथ इस प्रकार सत्य के बंधन में है। तो सब लोग लगे कहने कि यह तो बहुत बुरा किया, कई कई तो ऐसा कार्य कर रही है जैसे अपने आंख को हाथ से निकाल करके और स्वयं देखना चाहती, वृक्ष के जड़ को काट कर पल्लव को सींचना चाहती। बहुत प्रकार से लोग बात कहने लगे। तो भगवान श्री राम अपने माँ के पास गए सबसे पहले। वहां जाते ही माता कौशल्या कहने लगी, बेटा कुशल से हो ना, आओ आओ स्नान कर लो और स्नान करके कुछ भोजन कर लो। भगवान भोर में उठ करके ही चले गए थे, अभी स्नान नहीं किए थे। स्नान कर लो, नहा लो और कुछ खाओ जो मन में आवे, और आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, बहुत खुशी का दिन है। क्या समय दिया गया है? माता कौशल्या पूछती है। दिन तो जान गए लेकिन समय पूछती है, कौन सा समय है बताओ बताओ। और सुमंगल साज सजो, बहुत खुशी का दिन है। ये भगवान श्री राम के लिए वो बंधन था माँ का स्नेह। तो माता के वचन भगवान को अच्छे नहीं लग रहे थे। भगवान कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। भगवान ने कहा कि माँ, मेरे पिताजी ने मुझे वन विभाग का मंत्री बना दिया है, फॉरेस्ट विभाग दे दिया। पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। अयोध्या का राज छोटा था और वन तो बहुत बड़ा है, पूरा साउथ इंडिया और इधर महाराष्ट्र ये सब वन ही वन, मध्य प्रदेश। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे कानन का राज्य दिया, वन का राज्य दिया है और वन में और भी मेरा बहुत सा कार्य है, जाकर सत्संग करूंगा, जीवन सफल करूंगा। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं शहर में ना रहूं, सिटी में ना रहूं, वन में रहने की मेरी इच्छा थी। तो पिता ने मुझे आज्ञा दे दिया, इसीलिए तुम मुझे आज्ञा दो। इतना सुनते ही माता कौशल्या बहुत दुखित हो गई। वो कह नहीं सकती थी और तब उसने पूछा है कैसे हुआ। तो यहाँ वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम कुछ नहीं कह रहे थे इस विषय में क्यों वन में जाना। तो सुमंत्र जी का पुत्र वहां था, महामंत्री का पुत्र था, उसने कहा कि रानी जी ऐसी ऐसी बात है और कैकेयी जी ने वर मांगा है महाराज से, महाराज सत्य के बंधन में है। तो अपने भाग्य को कोसने लगी कौशल्या, बहुत प्रकार से विलाप करने लगी को क्या हो गया। लिखने चला था शशि और लिखा गया राहु। इस तरह से अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, क्या सुना करके क्या हो गया, मैं तो सुनी कि पुत्र को राज्य मिल रहा है और फिर वन में जाना पड़ा। सही कहा है कि कर्म की गति बड़ी कठिन है, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं। अंत में कौशल्या जी ने यह कहा कि बेटा यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है वन में जाने की तो मैं तुम्हें कैसे रोकूं, लेकिन बड़ी माँ समझ करके मैं मेरी बात मानो और वन में मत जाओ। पौजन जाऊ जान बड़ी माँ। भगवान श्री राम कैकेयी को ही माँ कहते थे और कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे। आपने लोक में देखा होगा अपने पिता के बड़े भाई की पत्नी होती है उसको बड़ी माँ कहते हैं लोक में, गांव में। और चाचा की पत्नी को चाची या छोटकी माँ ऐसे कहते हैं, छोटी माँ। बड़ा ही सुंदर समाज स्थापित है हम लोगों के भारत में, बहुत सुंदर रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। हमारे यहाँ पिता के भाई को जो छोटे होते हैं उनको छोटका बाबूजी कहते हैं बच्चे, आज भी मैं छोटे पिताजी और बड़े को बड़े पिताजी। बहुत ही सुंदर स्नेह से बंधा हुआ परिवार होता है। तो भगवान श्री राम कौशल्या जी को बड़ी माँ कहते थे और सुमित्रा जी को छोटी माँ और कैकेयी को माँ कहते थे, उसमें बड़ी छोटी नहीं लगाते थे, ऐसा स्वभाव भगवान का था। तो कौशल्या जी कहते हैं कि मैं बड़ी माँ हूँ इसलिए मेरी बात मान करके मत जाओ। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि माँ पिता का धर्म नष्ट हो जाएगा, जब उन्होंने वचन दे दिया है तो उस वचन का निर्वाह करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे वन में कोई कष्ट नहीं होगा, मैं अपने पिता के धर्म का निर्वाह करने के लिए वन में जाऊंगा। जिस समय कौशल्या इस प्रकार से कह रहे थे उसी समय सीता जी आई पास में। इसके पहले सीता जी स्नान करके और ब्राह्मणों से यज्ञ कराने के लिए सामान जुटा रही थी, आज हमारे पति का राज्य अभिषेक है उनके मंगल के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित की थी और वे लोग आने वाले थे यज्ञ करने के लिए। तो बहुत खुशी में वो आई माँ कौशल्या के पास, लेकिन यह दृश्य देखी तो बहुत दुखित हो गई। भगवान श्री राम अब तक स्नान भी नहीं किए थे और उनको बिना स्नान किए ही अयोध्या से निकलना था सवेरे सवेरे। कैकेयी ने कहा था कि होत प्रात मुनि वेश धरी जोन राम बन जाए मोर मरण राउर अजस निरप समझिए मन में। यदि सवेरे होते ही राम वन में नहीं गए तो मेरा मरण होगा, मैं मरूंगी और आपका अपजस होगा। तो सीता जी ने भगवान के इस रूप को देखा तो बहुत विलाप करने लगी, कुछ कह नहीं पाती थी कौशल्या जी के सामने। परंतु धीरज रखी, उसने सोचा कि इस समय कहना ही चाहिए। माता कौशल्या ने कह दिया कि राम ये सीता कुछ कहना चाहती है। तब भगवान श्री राम समझाने लगे बिना कहे ही। भगवान समझाते हैं बहुत धैर्य धारण कर अपने कर्तव्य समझ कर। मात समीप कहत सकुचाय, माता के सामने कहने में संकोच कर रहे थे। लेकिन बोले समल समझ मनमाही, समय समझ करके कि उचित समय है, इस समय पत्नी को शिक्षा देनी चाहिए। माँ के सामने संकोच होना चाहिए पुत्र को पत्नी से बात करने में, इससे यह शिक्षा मिलती है। तो और अभी उपदेश करना है तो माँ तो समीप कहत सकुचाही, बोले समल समझ मनमाही, परंतु समय समझ करके किस समय अवश्य कहना चाहिए। भगवान कहने लगे, राजकुमार इसी खावन सुना हूं, आन भात जन जिये कछु धरम गुना। हे राजकुमारी मेरी शिक्षा सुनो। सीता जी वन में जाने के लिए तैयार थी, उस समय भगवान उनको शिक्षा दे रहे, तो सबसे पहला संबोधन करते हैं राजकुमारी, प्रिया नहीं कहे, राजकुमारी कहे। इसके द्वारा मानो भगवान यह कह रहे हैं कि राजा की पुत्री होकर वन में कैसे रहेगी। तो राजकुमारी सिखावन सुनो, मेरी शिक्षा सुनो, और मेरी शिक्षा को अन्यथा मत लेना कि मैं तुमको रोकना ही चाहता हूँ, ये मेरा हाथ नहीं है, मैं कुछ कारण से रोकना चाहता हूँ। कहने का आशय ये, राजकुमारी सिखावन सुना हूँ, आन भात जिये जन कछु गुना हूँ, आपन मोर नीक जो चाह हूँ, वचन हमार मान गृह रह। यदि तुम मेरा और अपना नीक चाहती हो तो मेरी बात मान करके घर पर रह जाओ। कितनी सुंदर लोक भाषा है, आपन मोर नीक जो चाह हूँ, वचन हमार मान गृह रह। नीक शब्द बहुत प्रचलित है भोजपुरी में भी, नीक का अर्थ होता है अच्छा, बंगला में भी एक शब्द बहुत प्रसिद्ध नीक। तो हमारा और अपने नीक चाहती हो तो मेरी बात मानो और तुम घर पर रह जाओ। क्या करने के लिए भगवान कहते हैं, आयस मोर सास सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरा आदेश यही है कि तुम्हें सास की सेवा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान माँ नहीं कह रहे हैं तुम मेरी माँ की सेवा करो, यदि ऐसा कहते तो इससे भगवान अपना संबंध बता रहे हो, लेकिन सास की सेवा करो से सीता का संबंध बता रहे हैं, तुम्हारी माँ है, पति की माँ भी माँ मानी गई। पत्नी के दृष्टि में जो सास है वो माँ है डायरेक्ट, क्योंकि पति की माँ है। शास्त्र में बताया गया कि बिल्कुल अपनी माँ माननी चाहिए, और सास जी का कर्तव्य है कि उसको बिल्कुल अपनी बेटी मानना चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। तो बेचारी दूसरे का घर, अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में आई है, तो उसे इतना प्यार देना चाहिए, इतना स्नेह करना चाहिए कि उसे कभी ये अनुभव ना हो कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते थे और इस सास हमको रोज डांटती, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। उसे बिल्कुल पुत्री जैसा मानना चाहिए, अगर कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा करना चाहिए, गलती तो छोटे से ही होगी ना, ये तो ध्यान रखना चाहिए। छोटे का अनुभव कम होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता है, इसलिए गलती हो सकती है। तो कर्तव्य है सास का कि उसको क्षमा करे। कहीं कहीं तो सास ही लड़ना सिखा देती है पुत्र वधु को, बेचारी सीधी शादी होती है लेकिन सास ऐसे लड़ाकू होती है कि वो सिखा देती है, तो उसे गृहस्थी में मजा बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं होता। भगवान बोलने में कितना सावधान है, कहते हैं आयस मोर सास सेवकाई, मेरा आदेश है सास की सेवा करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं मेरी माँ की सेवा करो। सीता का ही संबंध बता रहे, सब विधि भामिनी भवन भलाई, हे भामिनी हे प्रिय, सब प्रकार से घर पर रहने में ही भलाई है। सादर सास ससुर पद पूजा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। एक वधु के लिए सास और ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। कितनी सुंदर शिक्षा पति दे रहा है। आज के युग में कोई होता और उसको ये पता चल जाए कि हमको वन में जाना है तो जाकर पत्नी को कहेगा तब तुम क्यों रहोगी, चलो निकालो अटैची और चलो अब छोड़ो इन लोगों को। पहले आदमी कहेगा तुम तो मेरी हो ना, अब यहाँ क्यों रहोगी। कि देखिए परिवार कैसे सुखी रहता है, शांत रहता है। भगवान बोल रहे हैं, सादर सास ससुर पद पूजा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे बढ़कर के दूसरे धर्म ही नहीं। बहुत सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं। अतः मेरी बात मान करके तुम घर पर रह जाओ। भगवान इतिहास बता रहे हैं, गुरुश्रुति सम्मत है, जैसा है कि गुरु और माता पिता जो कहते हैं, गुरु का अर्थ संबंध में बड़े, माता पिता को ही गुरु कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, जो स्त्री सास ससुर की बात नहीं मानती है और अपने हठ करती है, तो भगवान ने पहले ही कहा कि हे बामा, यदि तुम हठ करोगी कि मैं चलूंगी चलूंगी तो परिणाम ठीक नहीं होगा। भगवान इतिहास में दो लोगों का नाम बता रहे हैं कि नहुष और गालव, ये दोनों हठ करने के कारण बहुत दुख भोगे। पहले के लोग अपने स्वजनों को इतिहास सुनाया करते थे, आज का उदाहरण नहीं देते थे किसी का, इतिहास बताते थे। गालव नहुष नरेश, हठवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। नहुष महाराज चंद्र वंश में जन्म लिए थे और इनको इंद्र बनाया गया स्वर्ग में, लेकिन इन्होंने हठ कर लिया कि इंद्र की पत्नी मेरी पत्नी। बारंबार ऋषियों ने समझाया सबने कि महाराज ऐसा दुर्विचार ठीक नहीं है, अब ये आग्रह छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं माने। अंत में सप्तर्षियों को पालकी में जोत करके जा रहे थे सची के पास, और पैर से मारे अगस्त जी को, अगस्त जी ने साप दे दिया, तुम सर्प हो जाओ, अजगर हो जाओ, नहीं तो अब तक वे इंद्र पद पर होते, उनको कौन हटा सकता था, गलती करने के कारण हटा दिए गए। गालव राजा भी बहुत संकट सहे जिद्द के कारण। तो इस तरह से हठ नहीं करना चाहिए, तुम घर पर रहो। और यह बात तो भगवान कहे हैं, अंत में कहते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। अब वन का दुख बता रहे हैं, सीता जी तुमको अनुभव नहीं है कि वन क्या वस्तु होती है। कानन कठिन भयंकर भारी, जंगल बहुत कठिन होता है, भयंकर होता है, भयम करोती इति भयंकर, जिसे भय उत्पन्न हो जाए, जिसको देखते ही कलेजा कांप जाए, ऐसा भयानक वन होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी, घोर घाम, घोर हिम, घोर बारी और बयारी। बयारी का अर्थ तूफान हवा, और घाम जंगल में घोर घाम लगता है, घर्म कहते हैं संस्कृत में इसको। कहीं कहीं पर्वत की चट्टाने होती हैं, स्फटिक की चट्टाने चाहे समतल, तो उनसे टकरा करके सूर्य की किरणें बहुत तीखी लगती हैं कहीं कहीं। जैसे आपने शीशा एक देखा होगा जिसको सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के केंद्रीभूत होती हैं, तो रुआ को जला देती है, कहीं आग लग जाती है। वन में कहीं कहीं पर्वत से टकरा करके सूर्य की किरणें आती है, एक तो डायरेक्ट किरण लगती ही है, दूसरे चारों तरफ से टकरा करके जो आती है तो जलने लगता है व्यक्ति। गजेंद्र को ऐसा ही हुआ था, तो व्याकुल होकर उस सरोवर में पानी पीने गए थे। तो भगवान कहते हैं घोर घाम लगता है, घोर घाम, घोर हिम, और ठंडा भी बहुत अधिक पड़ता है पहाड़ में जंगल में। बारी और बड़ा घोर है, बारी बारी का अर्थ है वर्षा, जल, जोर की वर्षा होने लगती है, कोई आश्रय नहीं रहता है। ऐसी वर्षा होती है कि अब व्यक्ति कहाँ जाए कोई सूझ नहीं पड़ता है। गुफा में जाता है तो वहां बाघ और सर्प का भय रहता है, और बाहर वर्षा में रहता है तो बहुत कठिन है जंगल का वास। और बयारी, बयारी का अर्थ तेज हवा, बयार बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो ऐसे स्थान पर तुम चलने का साहस मत करो। घोर घाम हिमबारी बयारी, इस तरह से भगवान वर्णन कर रहे हैं। कंटक कुश मग कांकर नाना, और पथ में कंटक होते हैं, चलने में कुश होता है, अनेक प्रकार के कंकड़ होते हैं। चलब पया दही बिनु पद त्राण, पैदल चलना पड़ता है वो भी बिना पद त्राण के। जूता का को कहते हैं पद त्राण, पैर की रक्षा करने वाला। लेकिन मान लो यहाँ से तो कोई एक चप्पल पहन करके चलोगी, लेकिन वो तो एक महीने में ही टूट जाएगा, 14 वर्ष रहना है। तो चलेगा नहीं जूता, बिना जूता के घूमना पड़ेगा, बिना चप्पल के घूमना पड़ेगा पैदल। और उस पर भी चरण कमल मृदुमंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, और तुम्हारे चरण अति मृदु हैं, तुम्हारे चरण कमल के समान है, अति मृदु हैं, और कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े पर्वत की चढ़ाई पड़ेगी। भूमिधर का अर्थ पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत पड़ेगी। कंदर खो नदी नद नारे, जंगल में तो कहीं कहीं कंदराएं पड़ेगी, गुफाएं भारी भारी, और खो है, खो शब्द का अर्थ होता है पर्वत के ऊंचे शिखरों के बीच में जो जगह होती है, जहां गौवे चरती हैं, चाहे बाघ भालू आदि रहते हैं, उसको खो कहते। खो शब्द बहुत प्रचलित है। कंदर खो खो नदी गिरनारे, नदी नद नारे, कहीं कहीं नदियां भयानक होती हैं, कहीं नद होते हैं, कहीं बड़े बड़े नाले होते हैं। अगम अगाध न जाहि निहारे, इतने वे कठिन होते हैं कि देखने में डर लगता है, न जाहि निहारे, देखने में डर लगता है। तो इस प्रकार के दुख हैं। और भालू बाघ ब्रिक और केहरी सिंह और हाथी, भालू बाघ ब्रिक केहरी नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। जंगल में जब हाथी गरजते हैं, बाघ भालू आदि, तो सुन करके धैर्य समाप्त हो जाता है। कमजोर दिल वाला आदमी तो उसी समय मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना भयानक बोलते हैं। केवल बोली सुन करके ही धैर्य समाप्त हो जाता है उनके। अटैक करे और सामने से कोई देख ले तब तो कहना ही क्या, इतना भयानक होते। इस विषय में एक सत्य घटना घटी थी हमारे गांव के पास। एक बार कुछ लोग मंच बनाकर जंगल में एक बाघ को मारना चाहते थे, बहुत से पशुओं को खा गया था, यहाँ तक कि मनुष्य की भी हत्या कर दिया था। राइफल चलाने में एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे, वो मंच बना करके और उस पर बैठे थे। एक व्यक्ति खास हमारे गांव के, वो कहे कि मैं मारूंगा बाघ को, मैं मारूंगा। तो उनके संबंधी ने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं चला पाएंगे, उसको देखते ही आप व्याकुल हो जाएंगे। कह रहे नहीं हम चला देंगे। तो ऐसा हुआ, बिल्कुल सत्य घटना है। जब बाघ निकला और निकल करके से जम्हाई लिया, जम्हाई लेते बाद तो उनका मुख बहुत चौड़ा खुलता है, तो जम्हाई लिया तो उसके हाथ से राइफल गिर गया और धोती खराब हो गई। ये दशा, वो तो खैर यही थी कि वो राइफल नीचे नहीं गिरा, और अंत में वो बाघ कहीं चला गया, मार नहीं पाए लोग। बाद में लोग आकर के देखने लगे तो बेहोश पड़ा हुआ, उसको दांत लगा था, देखते ही दशा हो गई थी। भगवान कहते हैं कि भालू ब्रेक केहरी और नाग, नाग का अर्थ है हाथी, बाघ, ये सब जब बोलते हैं तो इनकी बोली सुनकर के धैर्य भाग जाता है। करहीं नाद सुन धीरज भाग, धैर्य भाग जाता है। नर आहार रजनीचर करही, कपट वेश विधि कोटिक करही। और जंगल में ऐसे ऐसे रजनीचर होते हैं जो आदमी का ही भोजन करते हैं। सीता जी को भगवान समझा रहे हैं, वहां मत जाओ, तुमको सीधे खा जाएंगे, तुम्हारा तो शरीर और कोमल है, सुकुमार है, उनको चबाने में कोई परिश्रम भी नहीं पड़ेगा, न पकाने की जरूरत पड़ेगी, कच्चे खा जाएंगे। तो नर आहार रजनीचर कर रही, नर आहार कर रही, तब तो नारी के लिए तो कहना ही नहीं। जो कठोर शरीर वाले पुरुषों को खा जाते हैं तो नारियों को कितना जल्दी खाएंगे, ये तो कहना ही क्या। अच्छा, यह भी बात नहीं कि चलो वो आएंगे तो भाग जाए, भाग जाओगे कहीं। कपट वेश विधि कोटिक कर, करोड़ों प्रकार के कपट में भेष बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कब कहाँ आ गए, तो कहीं से भी पकड़ कर खाया जाए।